राधा माधव कुंज बिहारी समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन भक्त मनाचार्य वृंद की जय गौर प्रेम नंदे ऑल ग्लोरीज़ टू सिंपल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ टू सिंपल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ टू सिंपल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ श्री गुरु एंड गौरांग हरे कृष्णा। आज विशेष रूप से हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को। पुरुषोत्तम मास ये चल रहा है, ये हर साल नहीं आता, तीन साल में एक बार ये आता है और अभी शुरू हुआ था 18 जुलाई से शुरू हुआ था और चलेगा 16 अगस्त तक चलेगा। तो ये पुरुषोत्तम मास का ही समय चल रहा है, तो हमने विचार किया कि श्रवण करना चाहिए इसके महात्म्य को। बहुत ही अद्भुत महात्म्य है पुरुषोत्तम मास का, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और बाद में अगर समय मिला तो भगवद गीता के 15वां अध्याय का हम पूरा पाठ श्रवण करेंगे जो पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इसका भी विशेष फल होता है पंद्रहवें अध्याय के पाठ का, पुरुषोत्तम मास में गीता के पंद्रहवें अध्याय का जो पाठ करना है इसका विशेष फल होता है। तो फिर हम भगवद्गीता के पंद्रहवें अध्याय का भी पाठ करेंगे, तो भगवद्गीता की पुस्तक आपके पास रहेगी। लेकिन इसके पहले हम पद्म पुराण से श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार क्या हुआ, हजारों ऋषि एकत्रित हुए नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए, और सौभाग्य से महामुनि सूत गोस्वामी वहां आए। कहां से आए, विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए कहां पर आए, नैमिषारण्य में आए। और उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। उस स्थान पर जो एकत्रित ऋषि थे वे बड़े प्रसन्न हुए देख करके, किसको, सूत गोस्वामी को। वे सब खड़े हो गए, तुरंत उनको सम्मान किया और बहुत ही सुंदर व्यासन प्रदान किया और उनसे प्रार्थना की कि वो व्यासन पर बैठे हैं। सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं सूत गोस्वामी से कि कृपा करके व्यासन पर बैठिए। नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा सूत गोस्वामी से हाथ जोड़ करके, हे सूत जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमें बताइए भगवान के अद्भुत लीलाओं के बारे में, अद्भुत कार्यकलापों के बारे में। वैसे तो हजारों कथाएं हैं, परंतु हम श्रवण करना चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, जिसका अनुसरण करके हम सब इस भौतिक जगत के भव सागर से पार हो जाएं और भगवत धाम जा सकें। ऐसी अद्भुत कथा सुनाइए। तो इन सब ऋषियों ने जो प्रार्थना की उसको सुन करके, और ये सब जो ऋषि जो प्रार्थना करने वाले थे इनके मुखिया कौन है, शौनक ऋषि। तो सूत गोस्वामी बोलने लगे, हे ऋषियों, कृपा करके आप श्रवण करो। सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया था और वहां से हजारों तीर्थों में भ्रमण करते हुए, हजारों अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं पहुंचा कहां, हस्तिनापुर। और वहां गंगा के तट पर मैंने देखा हजारों ऋषि एकत्रित हुए हैं परीक्षित महाराज के साथ। और फिर उसी समय महामुनि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और सब ऋषि जो वहां उपस्थित थे उन्होंने उनको उचित सम्मान किया, अपने आसनों से खड़े हो गए, हाथ जोड़े हुए और सब ऋषियों ने एकत्रित होकर के सुखदेव गोस्वामी को व्यासन प्रदान किया, जो कि कृष्ण कथा सुनाएंगे परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं अभी तुरंत हस्तिनापुर से आया हूं जहां मैंने श्रीमद् भागवत श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से, और अब मैं आपको सुनाऊंगा भगवान की लीलाओं के और सर्व आकर्षक चरित्र के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है, ध्यान से सुनिए, श्री नारद मुनि बद्रिका आश्रम पहुंचे, जो कि स्थान है किसका, श्री नारायण ऋषि का स्थान है। वहां पर अलकनंदा नदी वो बह रही है उनके चरण कमलों से, और नारद जी ने प्रणाम किया नारायण भगवान को और प्रार्थना की, हे देवताओं के स्वामी, हे दया के समुद्र, हे सृष्टि के रचयिता, आप पूर्ण सत्यशील हैं और सत्य के सार हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सब जीव लगे हुए हैं किसमें, इंद्रिय तृप्ति में, वे जीवन के चरम लक्ष्य को भूल चुके हैं, इसलिए कृपा करके कुछ ऐसी बात समझाओ जिससे दोनों को लाभ हो, मेरे लिए भी लाभ हो, जो संन्यास जीवन में जो दीक्षित हैं उनके लिए भी लाभ हो और जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी लाभदायक हो। हाँ, कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे कि आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिले और भगवान के धाम जाने में सहायता मिले। तो नारद जी के मधुर वचनों को सुनकर के भगवान नारायण प्रसन्न हुए और वे बोले, हे नारद, कृपया श्रवण करो भगवान की पवित्र चरित्रों के बारे में, श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र श्रवण करो, क्योंकि उनसे सब प्रकार के पापों के फल समाप्त हो जाते हैं। तुम पहले से ही भगवान के इन चरित्रों को जानते हो, परंतु दूसरों के लाभ के लिए तुम मुझसे फिर से पूछ रहे हो। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा पुरुषोत्तम मास की पवित्र महिमा को, जो कि पूर्ण शक्तिशाली है सब प्रकार के भौतिक सुख देने के लिए और साथ साथ भगवान के धाम जाने के लिए भी, जीवन के अंत में भगवान के धाम में भी वो पहुंचा देगा। क्या? पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सब महीनों का महात्म्य सुना है, जिसमें कार्तिक का महात्म्य, चैत्र का महात्म्य, कई महीनों के महात्म्य सुने, परंतु ये कौन सा महीना है पुरुषोत्तम मास, ये कौन सा महीना होता है? हे दया के समुद्र, कृपा करके मुझे बताइए इस पवित्र मास के बारे में। इस मास के गुणगान की क्या विधि है और इस मास में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मुझे स्नान करना चाहिए या दान करना चाहिए या मुझे क्या जप करना चाहिए या मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या मैं इस पूरे महीने में उपवास करूं? नारद जी कह रहे हैं, क्या पूरे महीने भर उपवास करूं, मतलब कुछ ना खाऊं, क्या करूं? कृपा करके सब कुछ बताइए विस्तार से। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे? नारायण भगवान से। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद के इन प्रश्नों को सुनकर के भगवान नारायण अपने मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख से, कमल के समान मुख से बोलने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जो कि पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था युधिष्ठिर महाराज को। कब? अब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कब समझाया था? जब धर्मराज युधिष्ठिर का सब कुछ नष्ट हो गया, उनका राज्य, उनका महल, यहां तक कि उनकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदी भी दुर्योधन के पास चली गई जुए के खेल में। उस समय द्रौपदी का अपमान किया दुशासन ने पूरे सब राजाओं की सभा में, परंतु जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया तो फिर उसकी रक्षा हुई उस खतरे की स्थिति से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपने राज्य को छोड़ करके गए और रहने लगे वृंदावन के अंदर काम वन में। ये 12 साल का वनवास हुआ उनको, 5 पांडव और 1 द्रौपदी को। एक बार श्री कृष्ण जो देवकी के पुत्र हैं वे पांडवों के पास गए उस वन में। सभी पांडव द्रौपदी सहित बहुत प्रसन्न हुए भगवान का दर्शन करके, वे भूल गए अपने जंगल के जीवन के कष्ट को। तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करके जंगल के जीवन के सब कष्ट भूल गए। उनको जो है नया जीवन प्राप्त हुआ। जैसे ही कृष्ण का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ, नया जीवन मिल गया, उन्होंने भगवान के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम किया और पांडवों की ऐसी दयनीय स्थिति देख करके श्री कृष्ण बहुत
दुखी हुए और साथ साथ वे बहुत गुस्सा हुए दुर्योधन के ऊपर, उनको दुर्योधन के ऊपर बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगा कि मानो भगवान पूरे संसार को विनष्ट कर डालेंगे। और तब पांडव जो है भयभीत हो गए और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे विनम्रता पूर्वक। तो उनकी विनम्र प्रार्थना को सुनकर के, अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर के भगवान ने अपने को संयत किया और बोले, हे अर्जुन, तुम सब पांडवों के ऊपर मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति जो मित्रता है इससे तुम्हारे बस में हूं। इसलिए मैं अब तुम्हें बताऊंगा पुरुषोत्तम मास के अद्भुत महात्म्य को। एक बार कुछ ऐसी संयोग की बात थी कि अतिरिक्त मास इस संसार में आया। हर कोई इस मास को क्या समझता है, अशुभ है और ऐसा माना कि ये मल मास है, मल के समान, ये अशुद्ध महीना। जैसे कोई व्यक्ति मल को छूना नहीं चाहता, इसी प्रकार से कोई इस मास में धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहता। तो निरंतर इस मास का तिरस्कार किया जा रहा था और निंदा की जा रही थी। हर कोई कहते थे अशुभ समय है ये, इसमें कोई पवित्र कार्य धार्मिक कार्य नहीं होने चाहिए, सब कोई बोलने लगे। इस प्रकार सब मनुष्यों के द्वारा जब इसका तिरस्कार हुआ और निरंतर जो बुरे शब्द हैं और निंदा है सुन करके ये जो अतिरिक्त मास है ये बहुत दुखी हुआ। ये बात तो एक देवी है, ये तो ये देवी दुखी हुई है, ये देवी दुखी हुई तो वो आई वैकुंठ में और अपने कष्ट कथा को भगवान के सामने सुनाने लगी। जब देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं तो वो गिर गए उनके चरण कमलों पर बड़े दुख से और अश्रु जो है तेजी से उसकी अश्रु आंखों से बहने लगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे दया के समुद्र, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि मैं असहाय हूं, मेरा तिरस्कार हुआ है और मेरी निंदा हुई है सब लोगों के द्वारा संसार भर में, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए और मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा करके मेरे प्रति उदासीन मत होइए। ऐसे शब्द कह करके ये अतिरिक्त मास की जो देवी है ये निरंतर भगवान के सामने रोती रही और उनके सामने बैठ गई निराशा के भाव में। उसकी विनम्र और दयनीय स्थिति देख करके भगवान विष्णु उसके ऊपर बहुत दयालु हुए। तो उसकी दयनीय और कष्ट की स्थिति को देख करके भगवान विष्णु को बहुत दया आई उसके ऊपर। उन्होंने उससे कहा, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सब प्रकार के कष्टों से, आप कृपा करके रोना बंद करो, आप उचित नहीं है शोक करना, जब तुमने मेरे चरण कमलों की शरण ली है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से सांत्वना दे करके, जब भगवान इस प्रकार से सांत्वना दी तो ये जो अतिरिक्त मास है इसकी देवी बोली, हे भगवान, आप जानते हैं मेरे कष्ट की स्थिति को, कोई भी इस तीनों लोकों में मेरे से अधिक कष्ट की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले जो दूसरे मास हैं और वर्ष हैं और दिन हैं और रात्रियां हैं दिशाएं हैं, इन सब की रक्षा हो रही आपके द्वारा, इसलिए वे निर्भय होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। परंतु मैं जो अतिरिक्त मास हूं, मेरा कोई नाम भी नहीं है, मेरा कोई नाम भी नहीं है और ना ही मेरा कोई रक्षक है, ना मेरा कोई पति है जो मुझे आश्रय दे। सभी देवता और मनुष्य मेरा तिरस्कार कर रहे हैं है? कि कोई भी मंगल कृत्य नहीं करना चाहता है। इस कारण से हे भगवान, मैं तुरंत ही मर जाना चाहती हूं। हे नारद, ये अतिरिक्त मास जब इस प्रकार से बार बार बोली कि मैं मरना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं, और वो भगवान के चरणों में गिर करके मूर्छित हो गई। भगवान विष्णु से इस प्रकार से प्रार्थना करने पर गरुड़ जी इस अतिरिक्त मास को पंखा करने लगे। गरुड़ जी के पंखे हैं ना, अपने पंखों से हवा करने लगे। गरुड़ जी वैकुंठ की बात है ये। तो कुछ समय के बाद वो उठी और फिर से बोलने लगी, हे जगत के स्वामी, मुझे आपकी शरण चाहिए, कृपया मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने इस अतिरिक्त मास को से कहा, हे बच्ची, तुम शोक मत करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा बहुत जल्दी। अब उठो और मेरे साथ आओ, कहां? गोलोक वृंदावन। भगवान विष्णु बोले, वैकुंठ में भगवान बोले, तुम मेरे साथ चलो कहां? गोलोक वृंदावन, जो कि यहां तक कि बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं जा सकते हैं। जहां पर गोलोक जो है भगवान श्री कृष्ण का धाम है, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने दो भुजाओं में रहते हैं, गोपियों से घिरे हुए, और अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। वे परमेश्वर श्री कृष्ण गोलोक धाम के जो भगवान है, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे सब प्रकार के कष्टों से। मलमास को लिया गोलोक धाम में, उसको अपने हाथ से पकड़ करके ले गए गोलोक धाम। तो बहुत दूर से भगवान विष्णु और मलमास ने देखा, क्या गोलोक का तेज तो बहुत अधिक तेज, जिससे क्या था, उस मलमास के आंखें बंद हो गई। इतना अधिक तेज था कि जो मलमास की आंखें बंद हो गई, इसलिए इस अतिरिक्त मास को अपने पीछे करके भगवान विष्णु आगे बढ़े। उसको अपने पीछे कर लिया, जिससे आंखें चौधियाए नहीं, इतना अधिक तेज था। तो इस प्रकार से अपने पीछे करके भगवान विष्णु आगे बढ़ते रहे, और कहां पहुंचे, उसके मुख्य द्वार पर पहुंचे, गोलोक धाम के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां पर जो द्वारपाल थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया, और उस पर हम कृष्ण से मिले, जो कि बहुत सी जो भक्त गोपियां उनसे घिरे हुए थे भगवान कृष्ण। तो भगवान विष्णु जो रमा देवी के पति हैं, उन्होंने प्रणाम किया किसको, भगवान श्री कृष्ण को। तब उन्होंने उस अतिरिक्त मास को भी कहा, क्या कि प्रणाम करो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। यद्यपि वो बहुत जोर जोर से रुदन कर रही थी वो देवी, तुरंत ही श्री कृष्ण ने पूछा कि ये क्यों रो रही है, ये गोलोक वृंदावन में है, ये क्यों रो रही है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर के भगवान विष्णु अपने आसन से खड़े हुए और समझाने लगे उस अतिरिक्त मास के कष्ट के बारे में। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि कृपा करके इसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, आप रक्षा करिए, और आपके सिवा और कोई नहीं है। हे भगवान कृष्ण, जो इस अतिरिक्त मास के नारकी स्थिति से रक्षा कर सके और इसको पूर्ण सुरक्षा दे सके। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने अपना आसन ग्रहण किया और भगवान कृष्ण बड़े ही गोपनीय बातें बताने लगे। आप ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब ये शब्द आप सब लोगों को सुना रहा हूं। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत ही महान कार्य किया है कि तुम इस अतिरिक्त मास को मेरे पास लाए हो, इस देवी को मेरे पास लाए हो। हाँ, तुम और अधिक प्रसिद्ध हो जाओगे इस प्रकार के कार्य से, क्योंकि तुमने इस मल मास को स्वीकार किया है तो मैं भी इसको स्वीकार करूंगा। हाँ, तो इसको अपने अपने गुणों के समान बना दूंगा। भगवान कहते हैं गुणों में अपने समान इसको मैं बना दूंगा। यस में मेरे समान, संपत्ति में मेरे समान, और ज्ञान में, सफलता में मेरे समान, और भक्तों को वरदान देने में भी मेरे समान। भगवान कहते हैं मैं इसको बना दूंगा। तो ये जो मास है ये बिल्कुल मेरे समान शक्तिशाली हो जाएगा, मतलब हो जाएगी, मतलब देवी है। तो मैं अपने सब प्रकार के गुण दे रहा हूं इस मास को, जिसका सबने बहिष्कार किया है, मैं सब गुण इसको दे रहा हूं। और मेरे नाम से इसका भी नाम पड़ेगा इस मास का, ये मास प्रसिद्ध हो जाएगा किस रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो हे जनार्दन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं विष्णु से, हे जनार्दन, अब इसको सब मेरे गुण प्राप्त हो गए हैं, मैं स्वयं इसका पति बनूंगा, रक्षक बनूंगा इस पुरुषोत्तम मास का, और बिल्कुल मेरे समान होने के कारण ये जो मास है ये सब मासों का, महीनों का राजा हो जाएगा, राजा या स्वामी मतलब बन जाएगी, देवी है तो सब मासों की देवी बन जाएगी। और ये जो मास है ये सबके द्वारा पूजित होगा, सब लोग पूजा करेंगे इस मास की, हर कोई अपने प्रणाम इसको अर्पित करेंगे, हर कोई इसकी पूजा करेंगे। ये मास उतना ही शक्तिशाली होगा जितना मैं हूं, किसी प्रकार का वरदान देने के लिए जो इसका व्रत करेगा। इस मास का जो व्रत करने वाला है तो वो अपने पिछले जितने भी पाप कर्म हैं, पाप फल हैं, उन सबको भस्म कर सकता है, और भौतिक जगत में सब प्रकार का आनंद प्राप्त करके वो भगवान के धाम में पहुंच सकता है। हे गरुड़ध्वज, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किससे, भगवान विष्णु से, मेरा गोलोक जो है तपस्या के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो महात्मा पुण्य कर्मों में लगे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अथवा पूरे जीवन भर उपवास करते हैं, वे भी मेरे धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। कौन सा धाम, गोलोक धाम। परंतु इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्रत करे और भक्त बन करके व्रत करे तो कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से भव सागर को पार कर सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है ये सब प्रकार की तपस्याओं में श्रेष्ठ है। जैसे कोई किसान है तो अच्छी उर्वर जो जमीन होती है उसमें अच्छी फसल निकालता है, अच्छी फसल पैदा करता है, है? उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भक्तियों का अभ्यास करते हैं भगवान के प्रति, इस पुरुषोत्तम मास में वे आनंद का जीवन प्राप्त करेंगे इस संसार में, और शरीर छोड़ करके जाएंगे भगवान के धाम में। है? जो अभागा और अज्ञानी व्यक्ति कोई जप नहीं करता, कोई दान नहीं देता कुछ भी, और भगवान श्री कृष्ण को सम्मान नहीं देता है, उनके भक्तों को सम्मान नहीं देता है, और ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और दूसरों के साथ दुश्मनी करता है, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वो असीम काल के लिए नरक में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं किससे, विष्णु जी से, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है जब तक कि वो भक्तियों का पालन नहीं करता है इस पुरुषोत्तम मास में। कोई व्यक्ति पूरी तरह से लगा हुआ हो इंद्रिय तृप्ति में, और कोई विशेष महत्व नहीं देता है इस पवित्र मास को, तो वो फिर सबसे बढ़िया व्यक्ति होता है नरक में जाने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा योग्य होता है नरक में जाने के लिए। सभी मनुष्यों को कुछ भक्तियों का पालन करना चाहिए इस पुरुषोत्तम मास में। क्या करें? मेरी पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें मेरे पवित्र नामों के कीर्तन के द्वारा, और क्या करें? श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, भगवद्गीता अध्ययन करें, विशेष रूप से 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवद्गीता, और क्या करें? रोज घी का दिया जलाए, जलाए नहीं बल्कि अर्पण करें, दीप दान करें भगवान के मंदिर, जो कार्तिक का जो नियम है वो भी कर सकता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति मेरी शिक्षाओं का पालन करता है, इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है ठीक से और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, तो वो प्राप्त करेगा प्रसिद्धि, संपत्ति और सुपुत्र, इससे इसी जीवन में प्राप्त करेगा, और सुखी जीवन बिता करके वो गोलोक धाम में वापस आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मेरी शिक्षाओं का पालन करके हर कोई, सभी को इस पवित्र मास का पूजन करना चाहिए। मैंने इसको सब महीनों में श्रेष्ठ बनाया है। हे रमा देवी के पति यानी विष्णु, सब प्रकार के संदेहों को छोड़ दो इस मास के बारे में, इस पुरुषोत्तम मास को इस मतलब देवी को अपने साथ ले जाओ वैकुंठ धाम में। तो पुरुषोत्तम मास का इस प्रकार संक्षिप्त इतिहास बतला करके भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के ऊपर बड़ी दया की दृष्टि डाली, युधिष्ठिर और द्रौपदी के ऊपर दया की दृष्टि डाली, और फिर अर्जुन से बोलने लगे, हे पुरुषश्रेष्ठ, अब तुम समझ सकते हो कारण कि क्यों तुम पांडव गण कष्ट भोग रहे हो। तुमने समझा नहीं और सम्मान नहीं किया इस पुरुषोत्तम मास की उपस्थिति को, का सम्मान नहीं किया, जो कि अभी हाल में ही बीत चुका है। तो ये जो महीना है ये वृंदावन चंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय है। वृंदावन चंद्र मतलब श्री कृष्ण को, जो कि बीत चुका है, परंतु तुम पांडव इस वन में रहे और तुमने पुरुषोत्तम मास का पूजन नहीं किया, इसलिए तुम लोग कष्ट भोग रहे हो। तुम उन्हीं अनुष्ठानों को करते रहे जो व्यास देव ने तुम्हें बताए थे, परंतु जब तक तुम पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करोगे तुमको मेरी शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना सुनाऊंगा जो कि द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित है। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक बहुत बड़े ऋषि मेधावी नाम के ऋषि की पुत्री थी। उसकी माता मर गई जब वो छोटी बच्ची थी और इस प्रकार से अपने पिता की देखरेख में बड़ी हुई। दिन प्रतिदिन वो जो है बड़ी होती गई और युवती हो गई। तो ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पिता की कोई रुचि नहीं थी कि इसके विवाह की व्यवस्था करते, और उसकी जो सखियां थी अपने पतियों के साथ थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ थी, और इस प्रकार से बहुत कष्ट के साथ वो अपने दिन बिता रही थी। कौन? द्रौपदी, पिछले जन्म में। इसी बीच में उसके पिता भी भौतिक संसार से चल बसे, हरि का पवित्र नाम बोल करके उनके पिता ने भी संसार को छोड़ दिया। इससे उनकी जो पुत्री है ये और ज्यादा कष्ट में पड़ गई। सौभाग्य से महर्षि दुर्वासा मुनि इसके आश्रम में आए। जब इनके पिता का देहांत हुआ तो बहुत ही जल्दी दुर्वासा मुनि आश्रम में आए, तो महर्षि को देख करके इस कन्या ने उनको प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक पूजन किया। उसने उनको फूल फल अर्पित किए किसको, दुर्वासा महर्षि को। हाँ, तो जब वो प्रसन्न हुए उसके स्वागत सत्कार के द्वारा, तो फिर वो शोक करने लगी और रोने लगी उनके सामने। तो ऋषि ने जो है उससे पूछा उसके शोक के बारे में, तो ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि महर्षि दुर्वासा, आप सब कुछ जानते हो, भूत वर्तमान और भविष्य, मेरा कोई आश्रय नहीं है संसार में, मेरे सब संबंधी खो गए चले गए, मेरे माता पिता भी चले गए, और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मैं विवाहिता भी नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई पति नहीं है मेरी रक्षा करने वाला। हे महर्षि, कृपया कुछ करो, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मुझे कुछ शिक्षा दो और इस कष्ट की स्थिति से मुझे निकालो। तो उसकी प्रार्थना को सुनकर के दुर्वासा विचार करने लगे इस कन्या के दुर्भाग्य के बारे में, और उन्होंने विचार किया कि अब इसके ऊपर कुछ मुझे दया करनी चाहिए। महर्षि दुर्वासा बोलने लगे, हे सुंदरी, 3 महीने बाद बहुत ही पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। ये पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और इस महीने में अगर कोई पवित्र स्नान एक बार भी करे, पुरुष हो या स्त्री, तो पूर्ण रूप से निष्पाप हो सकता है। ये पुरुषोत्तम मास दूसरे महीनों की तुलना में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कार्तिक मास से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरे महीनों की जो का जो महात्म है, तो उनका जो है सब मिलकर के भी इस मास के महात्म की 16वीं कला भी नहीं बन सकता, 16वां हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो जो व्यक्ति इस महीने में अगर एक बार भी पवित्र स्नान करे, तो वो उसका फल जो है कितना होता है, गंगा जी में 12,000 साल तक स्नान करने का फल मिलता है उसको। क्या समझे, गंगा जी में 12,000 साल तक जो स्नान करने का फल है, इस पुरुषोत्तम मास में एक बार कोई व्यक्ति पवित्र स्नान करे तो वो फल प्राप्त कर सकता है। अथवा जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे या गोदावरी में स्नान करे, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो उतना फल पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का होता है। अगर तुम इस मास में पवित्र स्नान करो, दान दो और कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुमको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कृपया मेरी शिक्षा का पालन करो और भूलना नहीं कि पुरुषोत्तम मास जो आ रहा है, तो इसकी सच्चे भाव से पूजा करना। ये सब बोल करके महर्षि दुर्वासा मौन हो गए। दुर्भाग्य से ये जो युवती ब्राह्मणी थी, इसने विश्वास नहीं किया इन शब्दों में, बल्कि और गुस्सा हो गई और निंदा करने लगी, क्या हे महर्षि, आप असत्य भाषण कर रहे हो, बड़ा अपराध किया। दुर्वासा से वो क्या कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, ये कैसे जो अतिरिक्त मास है, जिसे मल मास कहा जाता है, ये दूसरे जो अच्छे पवित्र मास है, जैसे माघ कार्तिक वैशाख, इनसे पवित्र कैसे हो सकता है। मैं आपके शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकती, आप मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। ये अतिरिक्त मास जो है सबसे ज्यादा अपवित्र माना जाता है कोई भी पवित्र कार्य करने के लिए। ये शब्द सुनकर के ब्राह्मण कन्या के दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए, उनका पूरा शरीर जलने लगा और उनकी आंखें लाल हो गई। परंतु फिर याद आया कि ये कन्या है, असहाय तो वैसे ही है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर अपने को नियंत्रित किया, दुर्वासा ने यानी साफ ही दिया। महर्षि दुर्वासा ने इस कन्या से कहा, हे मूर्ख, मैं तुमको साप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हें साप नहीं दूंगा। तुम असहाय अवस्था में हो और तुम एक मूर्ख बच्ची हो, तुम समझ नहीं सकती शास्त्रों के निष्कर्ष। मैं तुम्हारे अपराध को ग्रहण नहीं करता गंभीर पूर्वक, परंतु साथ साथ मैं सहन नहीं करूंगा और सहन करना भी नहीं चाहिए तुम्हारे अपराध को जो तुमने पुरुषोत्तम मास के प्रति कर दिया। अगले जीवन में तुम निश्चित रूप से अपने अपराधों का फल पाओगी। महर्षि दुर्वासा तब बड़ी जल्दी चले गए उस स्थान से भगवान नारायण की सेवा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुमसे कहा हे निष्पाप, जब दुर्वासा मुनि चले गए उस स्थान से तो ब्राह्मण कन्या द्रौपदी, मतलब पिछले जन्म की द्रौपदी, इस जन्म में द्रौपदी है पिछले जन्म की कन्या, उसने भी उसका भी एक क्षण में सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया। पुरुषोत्तम मास की अपराधी बनने के कारण उसका शरीर अब बहुत ही कुरूप हो गया और उसको अपने सौंदर्य उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। तब उसने विचार किया कि अब शिव जी की पूजा करेगी जो कि आशुतोष कहे जाते हैं, हाँ, जो व्यक्ति बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाए। ये युवती ब्राह्मणी जो है फिर शुरू करती है बहुत बड़ी तपस्या, किस लिए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो पार्वती के पति हैं। तो वो अपनी तपस्या करती रही 9000 साल तक। गर्मियों में वो बैठती थी ध्यान के लिए अग्नि और सूर्य के सामने, तपी तपते हुए सूर्य के सामने और आग भी जला ली चारों तरफ इस प्रकार से। और जाड़े की ऋतु में उसने ध्यान किया कहां पर?
वहां पर बर्फ के समान ठंडा पानी था,
वहां पर उसकी महान तपस्या को देखते हुए यहां तक कि जो देवता हैं वे भी भयभीत हो गए। शंकर जी तब प्रकट हुए इस ब्राह्मण कन्या के सामने, क्योंकि वो प्रसन्न थे उसकी पूजा से और तपस्या से।
तो उस समय शंकर जी अपने आध्यात्मिक रूप में प्रकट हुए,
के सामने प्रकट हुए अपने आध्यात्मिक रूप में, और वो तुरंत ही खड़ी हो गई, उनका सम्मान किया। शंकर जी की उपस्थिति में उसके पूरे शरीर की जो कमजोरी है वो दूर हो गई और वो फिर से सुंदर दिखाई देने लगी। तो शंकर जी को अपने सामने देख करके उसने अपने मन में ही उनका पूजन करना शुरू किया और फिर बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगी उनको प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत प्रसन्न हो गए इस कन्या पर। तो शिव जी बोले हे तपस्विनी, तुम्हारा सौभाग्य हो, अब तुम मुझसे कुछ वरदान प्राप्त करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो कुछ चाहोगी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ये सब सुनकर के शंकर जी के मुख से इस कन्या ने कहा हे दीन बंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। तो उन्हीं शब्दों को बार बार बोलती हुई मुझे पति दीजिए 5 बार उस कन्या ने कहा और फिर वो मौन हो गई। तब शिवजी ने उत्तर दिया ऐसा ही हो, तुमने मुझसे पति 5 बार मांगा है इसलिए तुम को 5 पति प्राप्त होंगे। शंकर जी के शब्दों को सुनकर के कन्या बड़ी लज्जित हुई। उसने कहा हे प्रभु, ये तो बहुत निंदनीय है एक कन्या के लिए कि 5 पति प्राप्त हों, कृपया आपने शब्दों को बदलो। शिव जी ने तब बड़ी गंभीरता से उससे कहा कि ये मेरे लिए असंभव है, तुम्हें जो मांगा मुझसे वही मिलेगा, तुमको 5 पति मिलेंगे अगले जीवन में। पहले ही तुमने पुरुषोत्तम मास का अपराध किया है कि तुमने दुर्वासा ऋषि की कोई बात नहीं मानी। हे ब्राह्मण कन्या, दुर्वासा मुनि के शरीर में और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, हम सभी देवता ब्रह्मा जी सहित और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद हैं, ये भी इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार जो पुरुषोत्तम मास का भक्त है उसको सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है इस जीवन में और जीवन के अंत में वो गोलोक धाम में जाता है जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। इस पुरुषोत्तम जो पवित्र मास है इसका अपराध करने के कारण तुमको अगले जीवन में 5 पति प्राप्त होंगे। ये कन्या फिर बड़ी निराश हुई, परंतु शंकर जी तुरंत उस स्थान से अदृश्य हो गए और जब शिव जी चले गए तो ये युवती ब्राह्मणी बड़ी निराश हुई, बहुत भयभीत हुई अपने भविष्य के जीवन के बारे में। इस प्रकार से कुछ समय के बाद इसने अपना शरीर छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण तब कहते हैं कि अर्जुन इसी बीच में महान राजा द्रुपद ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ की अग्नि से ये जवान ब्राह्मणी ने जन्म लिया और ये महाराज द्रुपद की पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन यही मेधावी ऋषि की कन्या अब प्रसिद्ध है संसार में किस नाम से, द्रौपदी के नाम से। तो ये तुम्हारी जो अभी वर्तमान में पत्नी है यही है और कोई नहीं है। क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी अपने पिछले जीवन में इसलिए इसका अपमान हुआ दुशासन के द्वारा पूरे कौरवों की सभा के बीच में और अपने पांडव पतियों के सामने भी। सौभाग्य से इसने फिर मेरा स्मरण किया यानी श्री कृष्ण का और मेरी शरण ली, इसके अपराधों को क्षमा करके मैंने इसकी रक्षा की उस निंदनीय स्थिति से और दुशासन के हाथों से मैंने रक्षा की। हे प्रिय पांडव बंधु, अब भूलना नहीं जो आगे आने वाला पुरुषोत्तम मास है उसको। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है उसे कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। ये पुरुषोत्तम मास पूर्ण शक्तिशाली है तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए और सब कष्टों को दूर करने के लिए। अब आपके जो 12 वर्ष हैं वन के जीवन के ये समाप्त होने वाले हैं, कृपया पुरुषोत्तम मास की पूजा करो सच्चाई के साथ, क्योंकि ये सब प्रकार का सौभाग्य प्रदान करेगा आपके ऊपर। तो पांडवों को इस प्रकार से पूर्ण सांत्वना देकर के भगवान श्री कृष्ण चले गए, कहां द्वारका चले गए। कुछ समय के बाद जब पुरुषोत्तम मास आया, महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को याद दिलाया और पत्नी द्रौपदी को याद दिलाया भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के बारे में। तो इन सबों ने उन्हीं शिक्षाओं का पालन किया जो भगवान ने उनको दी थी। उन्होंने पूजा की पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कई प्रकार से इस पवित्र मास में। फिर पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम व्रत का पालन करके उनको अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया और सुखी जीवन बिता करके वे सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के धाम में गए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कृष्ण कथा श्रवण करने में लगना चाहिए, भक्त के मुख से कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा कृष्ण का चिंतन कर सकता है, उनकी लीलाओं की चर्चा कर सकता है दूसरे भक्तों के साथ। उसे जो विश्राम करना चाहिए कैसे, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने हृदय में। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उसको अपने गृहस्थ के कार्य करने चाहिए सच्चाई के साथ और शांति के साथ। उसको किसी प्रकार की दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए और जो संत पुरुष हैं उनके ऊपर दया करनी चाहिए और साथ साथ जो दीन है उन पर भी दया करनी चाहिए। पशुओं की रक्षा करना और सत्य वचन बोलना, दया दिखाना और अहिंसा, ये कुछ विशेष सिद्धांत हैं गृहस्थ के जिस उसको पालन करना चाहिए। तो शुद्ध गोस्वामी ने तब इस चर्चा को आगे बढ़ाया जो भगवान नारायण और नारद जी के बीच में हुई थी। तो नैमिषारण्य के ऋषियों के सामने बता रहे हैं, उन्होंने कहा हे ब्राह्मणों, महर्षि नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए पुरुषोत्तम मास के बारे में इस बात को सुनकर के भगवान नारायण से, और उनको प्रणाम किया बार बार और फिर कहने लगे अच्छा ये पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है, ये सब प्रकार के व्रतों में और तपस्याओं में श्रेष्ठ है, यहां तक कि जो कोई व्यक्ति श्रवण करता है पुरुषोत्तम मास की महिमा को श्रद्धा पूर्वक, वो भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति प्राप्त करेगा और उसके सब प्रकार के पापों के फल तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है और पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है ठीक से, वो असीमित पुण्य प्राप्त करेगा और इस प्रकार से गोलोक प्राप्त करेगा। नारद मुनि ने तब भगवान नारायण से कहा, हे भगवान अब मुझे, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मेरी अपने हृदय में, और जो मेरा मन है वो भी पूर्ण संतुष्ट है, आपकी जय हो। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझा करके श्री सूत गोस्वामी ने अनुमति ली, जो इकट्ठे ऋषि मुनि थे जाने के लिए अनुमति ली गंगा जी में स्नान करने के लिए और दूसरे नियमित कृत्यों को करने के लिए। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया और फिर उन्होंने भी जो है उनको विनम्र प्रणाम किया और गंगा जी के तट पर गए। नैमिषारण्य के ऋषि तब आपस में कहने लगे कि अच्छा ये पवित्र मास पुरुषोत्तम मास सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और इसका जो इतिहास है वो प्राचीन है और ये बहुत दयालु है कि भक्त की जितनी इच्छाएं हैं सबको पूरी करता है, जैसे कि कल्प वृक्ष हो, ये पुरुषोत्तम मास कितना जो है गुणवान है। तो ये हमने चर्चा की आपसे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के बारे में। अब किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि अनजाने में और अनचाहे भी जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो मर जाते हैं, हम चलते हैं या कुछ काम करते हैं तो वो जो पाप है वो कैसे दूर हो सकता है? हाँ, ये सब पाप जो है ना तभी दूर होते हैं जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आओ। हम द्वारा सर्व पापेभ्यो मोक्षे क्षयं मा सुजा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो है? तो भगवान ने कहा ये तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी प्रकार के पाप हैं वो होते हैं, जानबूझ के होते हैं पाप कर्म और अनजाने में होते हैं, और कुछ पाप कर्म चाहते हुए किए जाते हैं और कुछ पाप कर्म ना चाहते हुए भी किए जाते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हारा सब पापों से उद्धार करूंगा। तो पुरुषोत्तम मास भी जो ना भगवान के समान ही पूर्ण शक्तिशाली है, तो पुरुषोत्तम मास का भी जो ना अगर आप करते हो, कुछ नियम का पालन करते हो तो इससे भी आपको वो लाभ प्राप्त होगा। हाँ, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पवित्र स्नान क्या है। पवित्र स्नान का मतलब ये है कि इस पुरुषोत्तम मास का जो है आप जो है गुण समझ करके कि पुरुषोत्तम मास में कितना गुण है, आप जो है अगर स्नान करते हैं इसके जो है महिमा को समझते हुए कि ये बहुत ही पवित्र समय है, तो इस तरह से अगर आप स्नान करते हैं इसका जो है विचार करते हुए तो ये पवित्र स्नान कराता है, ठीक है। इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने जो इतनी कृपा की है, इस अतिरिक्त मास को अपने सब गुण दे दिए, अपनी पूरी शक्ति दे दी है, इसका कुछ रहस्य है कि भगवान ने ऐसा इतना ज्यादा कृपा की इस अतिरिक्त मास के ऊपर? हाँ, इसके ऊपर रहस्य जरूर है लेकिन वो अज्ञात है, हम लोग नहीं जानते भगवान के रहस्य है। इस पवित्र मास, इनका जो प्रश्न है कि इसके नियम क्या है पवित्र मास पुरुषोत्तम मास के, आप जो है अपने घर में राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना कर सकते हो और उनकी पूजा करो प्रेम और भक्ति के साथ, और रोज की पूजा करो, कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। फिर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, भगवद गीता का अध्ययन करो, विशेष रूप से 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका, और घी का दिया दान करो, भगवान राधा कृष्ण को रोज दीप दान कर सकते हो, और क्या करो दान करो, विशेष रूप से गो सेवा और प्रसाद वितरण करो, और पवित्र नदियों में स्नान करो, तो यथासंभव आप जो है ये सब कार्य कर सकते हैं। हाँ, आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि भगवान नारायण ने जो पुरुषोत्तम मास के बारे में जो बताया है, तो वो भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में कुछ अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। कृष्ण क्या है? आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, और उनके फिर बहुत से विष्णु विस्तार हैं। वैकुंठ के जो विष्णु हैं वो भी कृष्ण के एक विस्तार हैं, है ना। तो विष्णु जी भी कृष्ण के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। और फिर वैकुंठ के जो विष्णु हैं उनके विस्तार हैं नारायण ऋषि जो बद्रिका धाम में है, है ना। इस प्रकार के तो कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, और कृष्ण क्या है? कृष्ण आदि पुरुष है। हाँ, अब हम भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जो पुरुषोत्तम योग है, और केवल संस्कृत में ही श्लोकों का पाठ करेंगे। अथ पंचदशोध्याय। श्री भगवान वाचन ऊर्धमूलम मधाशाखम अश्वत्थम प्राहुरम ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेन् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषये प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलं घति नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तन परिमार्गितम् यम् यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयां तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषां अध्यात नित्या विनिवृत्त कामां द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पदम हम जयं तन् न तन् भासयते सूर्यो नाशशांको न पावकः यं गत्वा नानिवर्तन्ते तन्धाम परमं मम ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवति उत्क्रामन्तं निस्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषां यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कैकृतात्मानं नैनं पश्यन्त चेतसां यदादित्ये गतं तेजुं जगन्वासैतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाह्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं द्वामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसां पुष्णामि चौषधि सर्वां सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वेश्वानरो भूत्वां प्राणिनां देहमाश्रितां प्राणापानसमायुक्तां पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तात्मतिर्ज्ञानमपोवनं च वेदेश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृन्वेद विदेव च द्वाविमां पुरुषालोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यां परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यं जय ईश्वरः
यस्माक्षरम मतीतोहम अक्षरादपिचोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेवं असम्मोढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतं इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नगं एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण धन्यवाद श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की श्री श्री गोणिताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
और हरे गौर हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे